कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। भजले गोविंद गोपाल रे, भजले गोविंद गोपाल रे। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। भजले गोविंद गोपाल रे, भजले गोविंद गोपाल रे। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ऐसे श्री घन श्याम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री घन श्याम को बारंबार प्रणाम है। भजले गोविंद गोपाल रे, भजले गोविंद गोपाल रे। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। भजले गोविंद गोपाल रे, भजले गोविंद गोपाल रे। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रहस गज को फंद छुड़ायो, द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को पंद छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। भजले गोविंद गोपाल रे, भजले गोविंद गोपाल रे। भजले गोविंद गोपाल रे भजले गोविंद गोपाल रे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल भज राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल राम राम हरे हरे
Ram 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 Hare Hare
Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Bol, Hari Bol.
Jai Om Vishnu Pad Paramahansa Parivrajakacharya Shtotar Sat His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Madhav Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padang Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna
Hare Krishna
To itna achha lag raha hai ki इतने बड़ी संख्या में आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं ऐसे बड़े मंदिर को शोभा देता है नहीं तो 30 साल पहले जो मंदिर का निर्माण हुआ था आप उस बात को सार्थक कर रहे हैं अभी मंदिर हैं इसीलिए ताकि लोग आएं और आकर कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ें हर चीज के लिए संघ होता है व्यापार के संघ होते हैं तरह तरह के लोग अपने अपने रुचि को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों का संग करते हैं जो उनकी तरह सोचते हैं तो फिर कृष्ण भक्तों को क्यों नहीं इकट्ठे आना चाहिए और भगवान कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए तो श्रील प्रभुपाद जी बताया करते थे कि हमारे इस्कॉन के मंदिर केवल मंदिर नहीं हैं ये वास्तव में विश्वविद्यालय हैं जहां हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सीख सकें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकें अब ये सब श्रद्धा पे आधारित है। तो हाँ, तो आज हम भगवद गीता के एक श्लोक की चर्चा करेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा की चर्चा करते हैं। नौवे अध्याय के तीसरा श्लोक है ये, तो मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमाम् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमाम् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमाम् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमाम् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि अश्रद्धाना पुरुषा परन्तप अप्राप्य माम् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप प्राप्य माम् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। हे परन्तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। कृपया दोहराइएगा। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। कौन चाहता है वापस जन्म मृत्यु के मार्ग में लौटने के लिए? कौन चाहता है कि पुनः हम माँ के गर्भ में 9 महीने रहें और फिर से जन्म लें और फिर से स्कूल जाएं, पाठशाला जाएं और फिर से अ आ ई ई सीखना शुरू करें और फिर से वही तनाव, वही समस्या, वही संसार। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ऐसे एक संत ने कहा है कि ये संसार क्या है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बस जन्म लेना फिर मर जाना, और मरने के बाद क्या होना, पुनरपि जननी जठरे शयनम, और फिर से एक जननी या माँ के गर्भ में फिर से जन्म लेना। यह संसारे बहु दुस्तारे, ये संसार कष्टों से भरा हुआ है, और भगवत गीता कोई पलायनवाद नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग संसार के कष्ट से डर के भगवान के शरण में आ रहे हैं। वास्तव में सही है, सभी को करना चाहिए। एक बार किसी से प्रभुपाद जी ने कहा कि आप लोग संसार के कष्टों से दूर जा रहे हो और श्री कृष्ण के शरण में जा रहे हो, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता है तो नरक की ओर। और जो लोग भगवान के शरण में नहीं जाते हैं, बड़े शूरवीरता से नरक की ओर जा रहे हैं, निडर होकर नरक की ओर जाना, तो इसे ऐसे निडरता में ऐसे शूरवीरता में क्या फायदा, क्या लाभ है। इससे अच्छा ये कि हम डरें कि ये संसार बहुत भयंकर चीज है और इससे हमें बच के रहना चाहिए। आप में से जो बीच समुद्र में गए हैं किसी नौके में, और जब बीच समुद्र में जाके बहुत बड़ी तूफान आई हो, तो आप जान सकते हैं कि वहां क्या शूरवीरता का काम है, कौन शूरवीर बनेगा वहां, बनने से लाभ भी क्या, कोई बहुत कुछ चीखे चिल्लाए मैं शूरवीर हूं, मैं ये हूं वो हूं, बीच समुद्र में क्या कर सकते हैं आप, जब बड़ी तूफान आए कोई सुनामी आए, कुछ नहीं किया जा सकता। तो बुद्धिमान व्यक्ति कायर नहीं है, डरपोक नहीं है, फिर भी वो जान लेता है कि शूरवीरता की सीमा कहाँ तक है। जो व्यक्ति शूरवीरता की सीमा को नहीं जानता वो मूर्ख कहलाता है। व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए कि मेरी सीमाएं कहाँ तक हैं। मैं यहां से नीचे कूद सकता हूं, भले पहले मंजिल से भी नीचे कूद सकता हूं, लेकिन दसवीं मंजिल से नीचे कूदूंगा मैं शूरवीर हूं कहे तो ये मूर्खता है, सही है ना। तो व्यक्ति को अपनी सीमाएं पहचान लेनी चाहिए और संसार की शक्ति को समझ लेना चाहिए। तो ये संसार की माया शक्ति इतनी ज्यादा है कि हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे शरण में आ जाओ। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्तिते, कि मेरे माया रूपी भवसागर को पार करना है अर्जुन असंभव है, प्राय असंभव है, बहुत मुश्किल है, परंतु जो मेरे शरण में आते हैं वो बड़े आसानी से इस भयंकर भवसागर को आसानी से पार कर लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का शरण लेने से न केवल इस संसार में जीते जी हम बड़े निडर होकर बड़े आनंद से हम जी सकते हैं, परंतु मृत्यु के बाद भी हमें पुनः एक माँ के गर्भ में जन्म लेने के लिए आना नहीं पड़ता है, हम भगवान के धाम में लौट कर चले जाते हैं। तो ये है श्रद्धा कि केवल भगवान के शरण ग्रहण करने मात्र से सब कुछ हो जाएगा। कई बार लोग कहते हैं कि श्रद्धा ये क्या चीज है, तो श्रद्धा की परिभाषा श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होए। वो कहते हैं श्रद्धा का अर्थ है वो सुदृढ़ विश्वास, वो निश्चय कि केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करने मात्र से अन्य सारे कर्म संपन्न हो जाएंगे। बहुत बड़ी चीज है ये, केवल कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा, हमारा पेट भी भर जाएगा, संसार भी चल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, यही श्रद्धा है। लेकिन ये श्रद्धा आए कैसे? क्योंकि बाहर की दुनिया में तो लोग ऐसी श्रद्धा हमें नहीं देते हैं। लोग क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि अजी, क्या भगवान हमारा पेट भरने वाले हैं? हमें परिश्रम करना होगा, हमें कष्ट सहन करना होगा संसार का, तब जाके कुछ हो सकता है। हाँ सही है, जो भक्त होते हैं वो आलसी नहीं होते हैं, परिश्रम से डरते नहीं हैं। संसार में हर एक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष के बिना कोई नहीं रह सकता, ना राजा ना रंक। इसलिए जंगल का राजा भी नहीं रह सकता, शेर को भी सिंह को भी परिश्रम करना पड़ता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगाः, कि जंगल का राजा जो सिंह होता है वो भी मुंह खोल के बैठेगा शांति से कि मेरे मुंह में भोजन आ जाए, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं, तो नहीं संभव है। बेचारे सिंह को भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है भोजन के लिए। तो परिश्रम से डरना नहीं है हमें, परंतु व्यर्थ का परिश्रम नहीं करना है। जितना आवश्यक है हमारे भरण पोषण के लिए उतना करना चाहिए, और जो समय बचता है वो भगवान का भजन करने के लिए बिताना चाहिए। इसके लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा क्या चीज है? बहुत मुश्किल नहीं है श्रद्धा को पाना। जैसा संग वैसा रंग। हम श्रद्धालु लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे तो फिर हमारे अंदर भी वही श्रद्धा आ जाएगी। यदि अश्रद्धालु लोगों के बीच में हम बैठेंगे और उठेंगे तो हमारी श्रद्धा भी वैसे हो जाएगी। संसार में श्रद्धा बढ़ेगी, भगवान में श्रद्धा कम हो जाएगी। एक बार नारद मुनि भगवान के धाम में जा रहे थे, वैकुंठ जगत में जा रहे थे। नारद जी का नाम तो आप सबने सुना है, भगवान के बड़े भक्त हैं। तो जाते जाते रास्ते में पहले उनको एक मोची मिल गए। तो मोची अपने जूतों की सिलाई कर रहा था, तो जूती सिलाई करते करते देखा कि नारद जी आ गए हैं, तो बहुत प्रसन्न हुए, प्रणाम किया नारद जी को और कहा, नारद जी हमारा जीवन धन्य हो गया, आप हमारे कुटिया में चले आए, और क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? तो नारद जी की थोड़ी बहुत सेवा की और नारद जी से पूछा, मुनिवर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो वैकुंठ जा रहा हूँ। अच्छा, भगवान नारायण के पास जा रहे हैं, बहुत अच्छा, तो वहाँ जाके कृपया भगवान से ये पूछिएगा कि इस तुच्छ जीव का उद्धार कब होगा और वो आपके धाम में कब लौट के आएगा। तो नारद जी ने कहा ठीक है। तो नारद जी भगवान का नाम लेते लेते आगे चले गए और रास्ते में एक ब्राह्मण मिल गए जो अपने पूजा पाठ कर रहे थे। तो ब्राह्मण ने नारद जी को देखा, उनका स्वागत किया, उनकी सेवा की और पूछा कि हे मुनिवर आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो वैकुंठ जा रहे हैं। अच्छा, भगवान नारायण के पास जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कृपया जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो उनसे ये पूछिएगा कि ये ब्राह्मण कब उनके पास वापस लौट के आएगा, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति कब प्राप्त कर लेगा ये। तो नारद जी ने कहा ठीक है, बिल्कुल पूछ लेंगे। तो आगे चलते चलते नारद जी वैकुंठ में पहुंच गए, वहां भगवान नारायण का दर्शन किया, उनका संग किया, बड़े आनंद से ऐसे काफी समय बीत गया। और फिर नारद जी को याद आया कि मुझे वापस भौतिक जगत में जाना है, मुझे प्रचार करना है। जैसे आप कभी चंडीगढ़ से वृंदावन आते हो और आके सोचते हो कितना अच्छा यहीं पे रह जाएं, फिर याद आता है कि नहीं, हम सब यहाँ आके वृंदावन में रहेंगे तो चंडीगढ़ में प्रचार कौन करेगा, चंडीगढ़ में सेवा कौन करेगा। फिर आप वापस आ जाते हैं थोड़े समय के बाद। तो नारद जी भी ऐसे ही आ गए वापस, लेकिन लौटने से पहले उनको याद आया कि दोनों ने मुझे, ये मोची जो थे और ब्राह्मण थे, उन्होंने भी एक सवाल किया था। तो उन्होंने नारायण से, भगवान से पूछा, भगवान कृष्ण से पूछा कि ये मोची हमें मिले थे और वो एक ब्राह्मण भी हमें मिले थे, तो दोनों ने एक सवाल किया, तो कृपया इन दोनों का सवाल का उत्तर दीजिए, आप जवाब दीजिए। तो भगवान ने कहा कि उस ब्राह्मण से जाके कहना हे नारद कि उसको तो मेरे पास लौट के आने के लिए अब कई लाखों जन्म लग जाएंगे। अच्छा, और उस मोची से कह देना कि वो इसी जीवन के अंत में मेरे पास लौट के आ जाएगा। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे वो तो ब्राह्मण इतने पूजा पाठ में लगे हुए थे और सारे वेदों का पाठ, वेदों के मंत्र बड़े कंठस्थ थे, और वो उसको लाखों जीवन लग जाएंगे और ये मोची बेचारा तुरंत चले आएगा, कैसे संभव है। लेकिन नारद जी ने सोचा ठीक है, तो नारद जी का संशय समझ पाए भगवान, उन्होंने कहा ठीक है, जब आप वापस जाओगे यदि वो आपसे प्रश्न करें कि भगवान वहाँ क्या कर रहे थे वैकुंठ में, तो उनसे कहना कि भगवान एक सुई के नोक से एक हाथी को निकाल रहे थे। तो नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। तो नारद जी चले आए और उसी रास्ते से आए लौट के, तो क्योंकि जाते समय वैकुंठ अंत में ब्राह्मण मिले थे, तो अब लौटते वक्त पहले ब्राह्मण मिल गए। तो ब्राह्मण ने नारद जी को देखा, बड़े खुश हुए, अरे नारद जी अब आ गए वैकुंठ से, दर्शन किए ना भगवान के। हाँ किए, अच्छा संग किया भगवान का, बहुत अच्छा संग मिला हमें। अच्छा ये बताइए भगवान ने क्या कहा कि मैं कब उनके पास लौट के जाऊंगा, जन्म मृत्यु से कि चक्र से मुक्ति कब मुझे मिलेगी। मुझे पता है उन्होंने कहा होगा कि इसी जन्म के अंत में मिलेगा मुझे मुक्ति। तो नारद जी ने कहा कि नहीं, भगवान ने कहा कि आपकी मुक्ति के लिए अब लाखों जन्म आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लाखों जन्म मुझे रुकना पड़ेगा, रुकना होगा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो चारों वेदों को जानता हूँ, मैं तो पूजा पाठ कर लेता हूँ, रोज करता हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ। नहीं 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 ऐसा नहीं, आपने कोई गलती की, शायद मुझे लगता है कि नारद मुनि आप गए ही नहीं होंगे वैकुंठ, आप यूं ही बस कह रहे हैं। अच्छा देखते हैं, यदि आप वास्तव में गए वैकुंठ में तो बताइए वहां भगवान क्या कर रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि भगवान एक सुई के नोक से एक हाथी को निकाल रहे थे। जोर से हंसने लगे ब्राह्मण। अब ये सबूत है, प्रमाण है कि आप तो गए ही नहीं वैकुंठ, भला ऐसे कभी संभव हो सकता है, एक सुई के नोक से कोई हाथी कभी निकल सकता है, ये तो संभव नहीं है। तो नारद जी आगे चले गए कि हाँ इसलिए भगवान ने सही कहा था। फिर आगे चले गए, मोची के पास पहुंचे, मोची ने नारद जी को देखा, अरे नारद मुनि आप आ गए, बहुत अच्छी बात है। देखिए वैकुंठ में एक विशेषता ये है कि मोबाइल फोन वहां बीच में नहीं बजते हैं, और जिनके मोबाइल फोन प्रवचन में कथा में बजते हैं वो उनके लिए वैकुंठ का दरवाजा बंद है, वो वैकुंठ में नहीं जा सकते। मोबाइल फोन की घंटी सुनने के लिए बार बार जन्म लेना होगा उनको। तो इसलिए आप जब यहाँ मंदिर में आते हैं तो दरवाजे के बाहर ही मोबाइल फोन बंद करके आना चाहिए, कम से कम एक दो तीन घंटे जब मंदिर में रहेंगे तब तो हमें इस चीज से मुक्त होना चाहिए, मुक्त ये मुक्ति तो मिलनी चाहिए कम से कम। वो जन्म मृत्यु के चक्र से जो मुक्ति है वो तो आएगी बाद में, लेकिन ये मोबाइल फोन से मुक्ति कब आएगी पता नहीं। तो खैर, तो जब वो मोची के पास आए तो नारद जी ने कहा हाँ हाँ हम होके आए। तो मोची ने पूछा क्या आपने मेरा सवाल किया, भगवान से पूछा। तो नारद जी ने कहा हाँ, तो भगवान ने उत्तर दिया कि आप इसी जन्म के अंत में उनके पास लौट के जाओगे, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा आपको एक जीवन में, इसी जीवन में मिल जाएगा। तो बड़े प्रसन्न हुए। मोची कहने लगे, देखिए भगवान कितने कृपालु हैं, मुझ जैसा अधम पतित क्षुद्र जीव जिसकी कोई योग्यता नहीं है, भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति उनके पास एक जीवन एक जन्म के बाद चले जाएगा। देखिए भगवान कितने कृपालु हैं, उनकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। और ऐसे भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे भगवान की कृपा की, भगवान के गुणों का। वो मोची ऐसे करने लगे, फिर पूछने लगे, अरे नारद जी जब आप गए ही थे तो आप मुझे ये तो बताइए कि भगवान वहां क्या कर रहे थे। तो नारद जी तो तैयार थे इस सवाल के लिए, भगवान ने पहले से तैयार कर रखा था उनको। कहा जब मैं गया वहां तो नारद भगवान जो है वो एक सुई के नोक से एक हाथी को निकाल रहे थे। तो जैसे ही मोची ने ये बात सुनी तो छलांग लगाकर कूद कूद के कहने लगे, अरे मेरे भगवान कितने महान हैं, कितने महान हैं। तो नारद जी ने कहा, क्या आप विश्वास करते हो, ऐसे कभी हो सकता है कहीं सुई के, नारद जी तो परीक्षा ले रहे थे ना मोची की, ऐसे कोई सुई के नोक से कोई हाथी निकाल सकता है, कभी ऐसे देखा है आपने? तो मोची ने उत्तर दिया, क्यों नहीं संभव है भगवान के लिए। और सामने एक अश्वत्थ का वृक्ष था और उन्होंने देखा, देखिए यहाँ ये बीज है, ये वृक्ष कितना बड़ा है, इतना विशाल है, देखिए इसकी शाखाएं कहाँ तक फैली हुई हैं, अब ये शाखाएं भी जड़ बन गए हैं और नए नए वृक्ष पैदा हो रहे हैं, कितने विस्तार देखिए इसका, और ये कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, एक छोटे से बीज से। देखिए ये वृक्ष का बीज इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हम देख भी नहीं सकते। तो भगवान ने बड़ा चमत्कार किया है, इस बड़े वृक्ष को, इस विराट विशाल वृक्ष को भगवान ने इस छोटे से बीज में लगा दिया है। तो जब भगवान इतने बड़े वृक्ष को इतने छोटे से बीज में लगा सकते हैं, रख सकते हैं, तो एक सुई के नोक से हाथी को निकालना कौन सी बड़ी बात है भगवान के लिए। और फिर से भगवान का गुणगान करते करते, इस कीर्तन करते करते वो नृत्य करने लगे मोची। तब नारद जी समझ गए कि भगवान ने इस मोची के बारे में ऐसे क्यों कहा था। तो भगवान के धाम में जाने के लिए ये योग्यता चाहिए, वो प्रेम चाहिए, वो श्रद्धा चाहिए कि भगवान के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोई चीज़ असंभव नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस बात को जान नहीं लेंगे कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है, हमारे कल्पना के बाहर है, तब तक हमारे अंदर वो श्रद्धा नहीं आएगी, तब तक हम उनसे प्रेम नहीं कर पाएंगे, उनकी भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये है श्रद्धा, ये जान लेना कि भगवान के लिए क्या असंभव है। भगवान हर एक अणु में विराजमान है, भगवान अर्च्य विग्रह के रूप में यहाँ विराजमान है हमारे सामने, भगवान हमारे हृदय में अंतर्यामी के रूप में स्थित हैं, और इतना होते हुए भी भगवान अपने वैकुंठ जगत में गोलोक वृंदावन में बांसुरी बजाते हुए भी विराजमान हैं, वहाँ लीला कर रहे हैं। भगवान एक ही समय सब जगह उपस्थित रह सकते हैं, हमारे लिए ऐसे नहीं हो सकता। हम यहाँ हैं तो दूसरी जगह नहीं रह सकते, दूसरी जगह हैं तो यहाँ मंदिर में नहीं रह सकते। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। तो जब तक हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो हम कैसे उनसे प्रेम कर पाएंगे। जब नारद जी की बात ही चल रही है तो नारद जी से ही सुने कि उनको, उनके हृदय में ये श्रद्धा आई कहाँ से। जब नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव को बता रहे थे कि वो भक्ति में कैसे आए, व्यासदेव जी जानना चाहते थे, अक्सर लोग पूछते हैं ना कि आप भक्ति में कैसे आए, आपकी भक्ति की शुरुआत कैसे हुई। तो व्यासदेव जी ने भी ऐसा सवाल किया अपने गुरु से। नारद मुनि ने कहा कि मेरे पिछले जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। जब मैं एक छोटा सा बच्चा था, केवल 5 साल की आयु थी मेरी, तो मेरी माँ जो बहुत श्रद्धालु थी, जे मेरे माँ के हृदय में संतों के प्रति, भक्तों के प्रति बहुत विश्वास था, और वो सोचती थी कि मुझे कब संतों की सेवा करने का अवसर मिल जाए। तो एक दिन चातुर्मास के समय हमारे घर में अनेक संत आए, और मेरी माँ ने और मैंने, हम दोनों ने उन संतों की बहुत सेवा की। और वो चातुर्मास के समय तो भ्रमण नहीं करते थे, इसलिए एक जगह हमारे यहाँ रहे वो, और हम उनकी सेवा करते रहे। दिन भर वो कथा करते, कीर्तन करते, और मैं उनके संग में ये कथा सुनता रहा, उनका संग लेता रहा। और केवल एक बार उनकी अनुमति से उनका उच्छिष्ट प्रसाद मैंने ग्रहण कर लिया, और चातुर्मास का समय बीत गया, और मैं और ये सारे महात्मा जो हैं हमारे घर छोड़ के वापस चले गए भ्रमण करने के लिए। और थोड़े दिन बाद ही मेरी माँ जब गाय का दोहन करने के लिए बाहर गईं, तो एक सांप ने उसे डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। और मेरे पास और कोई था नहीं, मेरे पिता नहीं थे, मेरे कोई और रिश्तेदार नहीं थे, कोई नहीं था मेरे पास, मैं अकेला रह गया। मैं केवल 5 साल का बच्चा था, लेकिन भगवान की कृपा से, उन महात्माओं की कृपा से मुझे कोई डर नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि ये भगवान की योजना है, अब मैं संसार के मोह से मुक्त हो गया, अब मैं भगवान की खोज में बाहर जाऊंगा। और फिर मैं निकल पड़ा, अनेक शहरों से गुजरते हुए, गांवों से गुजरते हुए, जंगलों से, वन से, गोचर भूमि आदि से गुजरते हुए, मैं अंततः एक वन में आया। एक वृक्ष के नीचे मैं वहां बैठा और भगवान के ऊपर ध्यान करते बैठ गया मैं। और काफ़ी समय के बाद भगवान मेरे हृदय के अंतःकरण में प्रकट हो गए, और उनका सुंदर दर्शन जब मैंने किया तो बड़े भाव विभोर होकर मेरे आँखों से आंसू आ गए, रोंगटे खड़े हो गए, और इतना आनंद मुझे आ रहा था। और फिर अचानक भगवान ओझल हो गए, अदृश्य हो गए, और मुझे पता नहीं चला कि अचानक भगवान क्यों मेरी दृष्टि से बाहर चले गए। मेरी दशा उस समय वैसी थी कि मानो एक बहुत गरीब आदमी को अचानक धन मिल जाता है और तुरंत उससे वो धन छीन भी लिया जाता है तो उसे कैसे लगता है, या एक बहुत भूखा आदमी, बहुत लंबे समय से उसे कोई भोजन नहीं मिला है और अचानक उसे भोजन मिल जाता है और खाने के पहले वो भोजन को छीन के ले लेता है तो उसे कैसे लगता है। ठीक उसी प्रकार इतने समय से मैं भगवान की खोज में था, अब भगवान मिले, भगवान का दर्शन हुआ, परंतु अचानक भगवान अदृश्य हो गए। और फिर मैंने बहुत संघर्ष किया, ध्यान में बैठा, जिस तरह से मैं पहले ध्यान में बैठा था वैसे ही ध्यान में बैठने लगा, परंतु जितना भी मैं प्रयास क्यों ना करूं, भगवान का दर्शन नहीं हो पाया। मैं बहुत निराश हो गया, बहुत उदास हो गया। लेकिन उस समय एक आकाशवाणी आई, भगवान कहने लगे कि हे वत्स, मैंने तुम्हें दर्शन तो दिया, लेकिन अब केवल मेरी तुम वाणी सुन रहे हो, मुझे देख नहीं पा रहे हो, जानबूझ के मैंने ऐसे किया है ताकि तुम ऐसी लालायत हो मेरे लिए, तुम्हारे अंदर मेरी प्राप्ति के लिए इतनी उत्कंठा बढ़ जाए है, इतने आतुर हो तुम मुझे प्राप्त करने के लिए कि ऐसे आतुरता से तुम्हारे हृदय में जो भी लेश मात्र कलमश बचे हुए हैं, जो प्रदूषण है हृदय में भौतिक इच्छाओं का, अनर्थों का, उनका निवारण हो जाए, तुम्हारा हृदय पूरी तरह से साफ हो जाए और इस जीवन के अंत में तुम मेरे पास अवश्य लौट के आओगे। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि देखिए भक्तों के संग का क्या असर होता है। जब श्रद्धालु लोगों के बीच में हम आके बैठते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, उनका नाम संकीर्तन करते हैं, तो श्रद्धा बढ़ जाती है खुद ब खुद। ये विशेषता है। जब बाहर के संसार में जाते हैं तो हमारे आध्यात्मिक बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, मंदिर नहीं जाना चाहिए, जप नहीं करना चाहिए, परंतु जब भक्तों के संग में आते हैं तुरंत हमें आध्यात्मिक बल मिल जाता है। तो श्रद्धा कैसे मिल सकती है? भक्तों के संग में आके। और कहीं श्रद्धा उपलब्ध नहीं है। और ऐसे श्रद्धा प्राप्त करने से भगवान कहते हैं अवश्य उनके पास हम पहुंच सकते हैं, परंतु जो व्यक्ति श्रद्धालु नहीं है उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने पहले से ही बतलाया है कि जो व्यक्ति श्रद्धालु है वो भक्तों के संग में निश्चित ही जाएगा। इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं आदो श्रद्धा ततः साधु संग तथा भजन क्रिया। थोड़ी सी श्रद्धा जब किसी व्यक्ति के हृदय में हो जाती है तो भगवान उसके लिए साधु संग की व्यवस्था करते हैं, भक्तों का संग। ऐसे भक्त को व्यक्ति को मिल जाता है। तो जब कोई व्यक्ति भक्तों के संग में आता है तो हमें ये जानना चाहिए कि ये यूं ही नहीं हुआ है, ये भगवान की योजना से हुआ है। और जब भगवान ने हमारे लिए भक्तों के संग की व्यवस्था की है तो हमें पूरा लाभ इसका उठाना चाहिए। जब नारद जी की बात हो रही है और भक्तों के संग की बात हो रही है तो क्यों ना और एक छोटी सी कहानी बताएं नारद जी के बारे में। एक बार नारद जी भगवान के पास गए। आप तो कहते हैं कि आपके भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे भक्तों का संग करने से हम आपके प्रेमा भक्ति के पथ में आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि भक्तों का संग वास्तव में कितना शक्तिशाली है। तो नारद जी ने कहा ठीक है, ये सवाल है ना आपका, तो आप पृथ्वी लोक पर जाइए, वहां पे एक स्थान है चंडीगढ़ में, वहाँ सेक्टर 36 ही है ना, 36 ही है, तो वहाँ बाहर मंदिर के ही प्रांगण में वहाँ बगीचे में एक कीड़ा है, तो उस कीड़े के पास जाइए और उससे ये प्रश्न करिए। तो नारद जी बड़े आनंद से चंडीगढ़ आए और उस समय वर्ल्ड कप तो नहीं चल रहा था, तो इसलिए वहाँ आके बड़ा माहौल, यहाँ कीर्तन वगैरह अच्छा चल रहा था, तो बाहर गए उस कीड़े के पास गए जिसका उल्लेख भगवान ने किया था। तो जैसे ही नारद जी उस कीड़े के सामने आए तो कीड़े ने नारद जी को देखा और मर गया। तो नारद जी बड़े बेचैन हो गए कि अरे क्या किया जाए, भगवान ने यहाँ मुझे भेजा, मुझे इतना महत्वपूर्ण प्रश्न का महत्वपूर्ण उत्तर मिलना था, अब ये कीड़ा तो मर गया, अब क्या करें। तो वापस चले गए वैकुंठ, प्रभु आपने मुझे भेजा था, मैं चंडीगढ़ इतना दूर गया, वैकुंठ से चंडीगढ़ आया और फिर मैंने कीड़े के पास जाकर क्या दिया, कीड़ा बेचारा मर गया, अब मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, यहाँ गौशाला है नहीं है? नहीं है, पहले थी ना, तो उस समय की बात हो रही है। तो नारद जी को भगवान ने कहा ठीक है, जहां गए थे ना वहीं पे गौशाला है, वहां एक गाय है, एक बछड़ा है, बछड़े ने जन्म लिया है, तो वहां उस बछड़े से जाके पूछना कि भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है। तो नारद जी आए फिर से चंडीगढ़, फिर से उस समय की बात है जहां यहाँ गौशाला थी, तो बछड़े का जन्म हुआ था। जो जैसे ही बछड़े के सामने गए नारद जी, तो बछड़े की मृत्यु हो गई। नारद जी सोच लगे अजीब मुसीबत है, अब क्या किया जाए। तो वापस चले गए भगवान के पास कि भगवान आपने मुझे बछड़े के पास भेजा, जैसे ही बछड़े ने मुझे देखा वो मर गए, अब क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा चिंता नहीं करना, देखो अब एक फलाना स्थान है, वहां एक राजकुमार है, एक राजा के घर में एक राजकुमार का जन्म हुआ है, तो उस राजकुमार के पास जाना और तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रभु अब वो राजकुमार भी मर गया तो क्या होगा, अब जो भी मुझे देखता है वो मर जाता है, अब क्या होगा? नहीं नहीं डरो नहीं, तुम जाना उस राजकुमार के पास जाओ। तो फिर नारद जी उस राजकुमार के पास गए और जैसे ही राजकुमार को देखा, नारद जी डर डर के आए, भाई अब रहना तुम, कुछ जाना नहीं। तो राजकुमार से प्रश्न किया कि भगवान ने आपके पास मुझे भेजा है, मेरा सवाल है कि भक्तों का संग का महत्व क्या है, मुझे बताइए। तो फिर राजकुमार ने उत्तर दिया, हाँ मेरा जीवन ही आपका उत्तर है, मैं ही वही कीड़ा था, मैंने आपका दर्शन किया और मुझे एक गाय का शरीर मिल गया, बछड़े का शरीर मिल गया, और फिर मैंने दोबारा आपका दर्शन किया, मुझे राजकुमार का शरीर मिल गया केवल आपके दर्शन मात्र से। तो नारद जी सोच लगे, बड़ी ठीक है, तो नारद जी को उत्तर मिल गया क्योंकि ये राजकुमार अब भक्त बन गए। तो कहने का मतलब ये है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है हम भक्त हैं, हमारा दर्शन करेंगे कोई तो कोई भक्त बन जाएगा, नहीं। नारद जी जैसे भक्तों की बात है, अन्यों के बारे में हमें ऐसे सोचना चाहिए, अपने बारे में नहीं। बल्कि जो सच्चा भक्त होता है वो अपने आप को भक्त ही नहीं मानता, वो सोचता है कि भक्त बनने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये है भक्तों का संग। तुल्याम लवेणापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगे संगस्य मर्त्यानाम के मुताशिषः। शिव जी स्वयं कहते हैं कि देखो भगवान के भक्तों का संग कितना लाभदायक है, इसकी तुलना नहीं कर सकते किसी चीज से, किसी भौतिक चीज से हम तुलना इसकी नहीं कर सकते हैं। तुल्याम लवेण अपि, इसकी तुलना भगवत संगी संगस्य, भगवान का संग करने वालों का संग, जो भक्त है वो भगवान का संग करते हैं इसलिए उनको भगवत संगी कहा जाता है। तो भगवत संगी संगस्य, तो भगवान के भक्तों का संग यदि हम एक लव मात्र भी करें, लव मतलब एक क्षण का भी एक हिस्सा होता है, एक ग्यारहवां हिस्सा, एक क्षण का एक ग्यारहवां हिस्सा लव कहलाता है। तो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों का लव मात्र संग करने से जो लाभ होगा उसकी तुलना न स्वर्गम, स्वर्ग की प्राप्ति से नहीं हो सकता, न अपुनर्भवम, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना अर्थात मुक्ति प्राप्त करने से भी नहीं हो सकता। मर्त्यानाम किम उताशिषः, तो इस भौतिक सृष्टि के छोटे मोटे जो वरदान हैं पृथ्वी लोक के, इनके बारे में क्या कहना। तो भक्तों का संग इतना लाभदायक है। सबसे बड़ा लाभ क्या है भक्तों के संग का, कि हमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, भगवान के प्रति आकर्षण हृदय में उत्पन्न हो जाता है, और ये सबसे बड़ा धन है दुनिया में। करोड़ों करोड़ों रुपए भी हमारे पास हों, यदि हमारे पास भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि ये सारे चीज़ें हमसे छीन लिए जानेंगी। श्रील प्रभुपाद जी बताया करते थे कि ये संसार के जितने भी चीज़ें हैं वो शून्य के बराबर हैं, हमारा जितना भी धन है वो एक शून्य है। यदि हमारी प्रतिष्ठा है समाज में तो वो एक दूसरा शून्य है, दो शून्य जोड़ देते हैं तो कितना होता है, शून्य ही होता है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, तीसरा शून्य है, कितना हुआ, शून्य। कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, कितना हुआ, चौथा शून्य। कोई व्यक्ति बहुत बलवान है और एक शून्य, कितना हुआ, किसी कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने वर्ल्ड कप जीत लिया है और एक शून्य, तो कितने हुए लगातार शून्य, छह। लेकिन मूल्य क्या हुआ? ऐसे जितने भी शून्य है एक के बाद एक लगाते जाइए, मूल्य शून्य ही होगा। परंतु यदि हम शून्यों के सामने एक जोड़ दें तो फिर उनका मूल्य बढ़ता जाएगा। जितने शून्य आप जोड़ते जाएंगे 10 गुना उसका मूल्य बढ़ता जाएगा। तो ये संसार की संपत्ति, ये संसार की प्रतिष्ठा आदि यदि शून्य है तो एक क्या है? कृष्ण, भगवान कृष्ण वो एक हैं, जिनको कि हमारे संसार के चीजों से जोड़ने से उनका मूल्य बन जाता है, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं रहता। तो वर्ल्ड कप जीतना है तो कृष्ण के लिए क्यों नहीं जीते? ताकि सभी लोग सोचे कि यहाँ ये कृष्ण के भक्त हैं, सब कृष्ण के लिए जीत रहे हैं, तो सभी लोग कृष्ण भक्ति में आएंगे। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद सब शराब पीने में पार्टी में चले जाएं, इससे क्या फायदा, इससे क्या लाभ होगा। तो भगवान श्री कृष्ण को हमारे जीवन में जोड़ने से हम वास्तव में धनी हो जाते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो ये हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करके हमारा मनुष्य जीवन सार्थक करना चाहिए। भक्ति करना बहुत आसान है, भक्तों के संग में आके भगवान के बारे में कुछ सुनना है, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आप सबसे निवेदन है कि हर रविवार को यहाँ आप आते रहिएगा और अपने जीवन में कृष्ण भक्ति को बड़े गंभीरता पूर्वक स्वीकार कीजिएगा। यहाँ आकर जो आप सुनते हैं उसको अपने जीवन में उतारिएगा, माला के ऊपर जप करिए हरे कृष्ण महामंत्र का, कीर्तन में शामिल हो जाइए, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए और यहाँ आके सेवा कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।